सप्त धातु हैं, सप्त रंग हैं। जिसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती है, दुराचारी और क्रूरता भरा व्यवहार होता है, उसके क्रिलियल फोटोग्राफी में काले काले धब्बे आएंगे। किसी के लाल रंग आएंगे क्रुद्ध स्वभाव के होंगे, तो किसी का एकदम श्वेत और पिलास पड़ता आभा मंडल आएगा। तो ये होली भी इसीलिए खेली जाती थी कि आपकी जीवन शक्ति का विकास हो। और इस होली में पलाश के फूल, जैसे पलाश का दंड ब्रह्मचारी को गुरुकुल में दिया जाता था, दंड करमंडलू माला झूली झंडा में पलाश का दंड दिया जाता था डंडा, तो पलाश का डंडा हाथ में पकड़ने से अपने जो सप्त रंग और सप्त धातुओं में कुछ कमी हो तो वो पूर्ति का भी काम करेगा और जीवनी शक्ति को ह्रास होने से बचाएगा। जो लोग भारतीय पद्धति से होली खेलते हैं उनका मन इतना खिन्न, इतना अशांत अथवा इतना निर्वस नहीं होता जितना पाश्चात्य लोगों का होता है। पाश्चात्य लोगों में निर्वसता की बीमारियां बहुत है, ब्रेन हेमरेज की बीमारियां ज्यादा है, अनिद्रा की बीमारियां ज्यादा है, सुसाइड के केस ज्यादा है, उद्विग्नता और मर्डर ज्यादा है। उन बिचारों का दोष नहीं है, वे ऋषि परंपरा से अपने सप्त धातुओं और सप्त रंगों को समकक्ष में नहीं रख पाते। हर रंग का अपना प्रभाव पड़ता है मन पर, विचारों पर। कुछ लोग तो रंगीन बोतलों में पानी रखकर सूर्य के किरणों में उसी रंग का पानी पर प्रभाव पड़ता है, वो पानी पिलाकर मरीजों को ठीक करते, जिस रंग की कमी से मर्ज हुआ है उस रंग की पूर्ति कर दी जाती है। तो इस होली में एक विशेषता ये है कि पहले के जमाने में होली में पलाश के फूल, गुलाब, रजनीगंधा आदि रंग, मेहंदी आदि का मिश्रण करके खुशबूदार रंगों से होली खेली जाती थी, जिससे सुगंधम पुष्टिवर्धनम, उस सात्विक सुगंध से ज्ञान तंतु में और नाड़ी तंतु में सात्विक पुष्टि आती है और हमारे रंगों के, शरीर के रंगों की जो कमी है वो ठीक होती है। उस जगह पर हम अंग्रेजी ये रासायनिक रंगों, केमिकल रंगों से हम अगर रंग की होली खेलते हैं तो जो सफेद रंग एक दूसरे को मुंह पे लगाते मल देते हैं, या रंगों में जो सिल्वर मिलाया जाता है तो एल्यूमिनियम प्रोबिडोस में होता है, जिससे त्वचा को स्पर्श करते धीरे धीरे त्वचा के द्वारा उन रंगों में मिलता है, कैंसर की बीमारी का खतरा ले आता है। लाल रंग में मरकरी सल्फेट मिलाया जाता है जो त्वचा को कैंसर, लकवा और आंशिक आंखों को अंधापन की सौगात दे देता है। ये केमिकल के रंग दिखते तो होली खेलने में है हू हो, लेकिन कितना हानि करते हैं। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड जो एलर्जी और अस्थमा को जन्म देता है। ऐसे जो हरा रंग केमिकल का है उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में एलर्जी, आंशिक अंधापन देता है। जो काले रंग से एक दूसरे का मुंह काला कर लेते हैं और दांत निकालते हैं, उन बेवकूफ को पता नहीं कि काले रंग में लेड एम्साइड जैसा वो केमिकल पड़ता है जिससे अपंगता, नाड़ियों की शिथिलता की संभावना है। रंग निर्माण में जो ये केमिकल पड़ते हैं वे हमारे उत्सव के लाभ की जगह पर हानि का काम करते हैं। दैनिक अखबारों ने भी केमिकल रंगों की निंदा की है और पलाश के फूलों की और रजनीगंधा की आदि प्रशंसा लिख रहे। तो ये भारतीय संस्कृति का सूर्योदय के चिन्ह है कि वर्षों तक हम ठगे जा रहे थे और जब इन रंगों की पोल खोली और पलाश के रंगों की और होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे। ये 15-20 वर्ष से अपन चल कल करते आए। तो अपनी तुच्छता बढ़ानी हो तो खुशामत खोरों के चक्कर में आइए और अपनी तुच्छता मिटानी हो तो शास्त्र और महापुरुषों की आज्ञा में। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे। कच्चे रंग उड़ जाए सब एक पक्के रंग से हम रंगे। पक्का रंग है कि हम शाश्वत है, हम अमर है, हम अमिट है, शरीर मिटने वाला है। शरीर का नाम मिटने वाला है, शरीर का सुख संपदा मिटने वाला है। जब शरीर ही मिटने वाला है तो शरीर का नाम और सुख संपदा की क्या कीमत है, क्योंकि ये प्रकृतिस्थ है। प्रकृति का सर्ग में महासर्ग में भी चुप नहीं होता और परलय में भी प्रकृति चुप नहीं रहती। परिवर्तन सतत जारी। जैसे सुबह सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय होते 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 ये सर्ग हुआ। दोपहर तक सूर्य की रोशनी बढ़ती चली गई, ताप बढ़ता गया, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद फिर विसर्ग, विसर्जन होते होते संध्या को सूर्य का प्रकाश गायब, गायब होते 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 मध्य रात्रि 12 बजे तक वो प्रकाश अंधकार में सोता है। 12 बजे के बाद फिर धीरे 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 सूर्य का प्रकाश का प्रभाव बढ़ते बढ़ते सुबह सूर्योदय होता है और दोपहर तक चलता है। ऐसे सर्ग और विसर्ग प्रकृति में विशेष क्रिया हुई तो सर्ग हुआ और क्रिया शांत चली तो विसर्ग हुआ। सूर्य 2400 घंटा है, लेकिन ये सर्ग और विसर्ग की क्रिया से हमें दिन और रात दिखता है। ऐसे ही परलय और उत्पत्ति दिखती। तो ये प्रकृति में सतत परिवर्तन है। जब परिवर्तन प्रकृति के मूल में है तो ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णु का विष्णुलोक, शिवजी का शिवलोक भी उस सर्ग और विसर्ग में आ जाते हैं। तो आपका हमारा मकान और आपका हमारा शरीर भी तो उसी में आ रहा है। कहां गई बचपन, जवानी कैसे चली गई, किस दिन जवानी गई कोई बता सकता है क्या? बुढ़ापा कौन से दिन आया? 62 वर्ष की उम्र है, नरसिंह मेहता ने शरीर नी थोड़ी कमजोरी लागी अने संत कहे छे न तू जोय तू रे वीण मांग्यू घड़पण कोणे मोकली दीधू रे नतु जोई तू अने वीण मांगे घड़पण कोणे मोकली दीधू। सर्ग अने विसर्ग ते प्रकृति की व्यवस्था है। बुद्धिमान वो है कि प्रकृति की व्यवस्था का मजा ले और परमात्मा के अस्तित्व से मुलाकात ले। आप परमात्मा को छोड़ नहीं सकते, परमात्मा आपको छोड़ नहीं सकता और प्रकृति की कोई भी अवस्था आप रख नहीं सकते। जिसको रख नहीं सकते उसके पीछे पागल होकर अंधे होकर हम भाग रहे हैं और जिसको छोड़ नहीं सकते उसकी खबर नहीं। इसी को बोलते हैं देव की माया। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये दुस्तर माया। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे नवासना बिना बिचारे ज्ञान। उस परमात्मा तत्व के ज्ञान के विचार के बिना तुम समाधि लगाकर 1400 साल के हो जाओ, 14000 साल के हो जाओ, रूप बदलना, कहीं किसी रूप में प्रकट हो जाना, ये शारीरिक रूपांतर की सिद्धाई है। लेकिन प्रकृति में वास्तव में जीव परमात्मा का अंश है, प्रकृति के गुण दोषों से पार है। बचपन बदल गया, तुम तो वही के वही हो। जवानी बदली, तुम तो वही के वही। क्रोध आया, बदल गया। काम आया, बदल गया। दुख आया, बदल गया। सुख आया, बदल गया। बिहार में एक लड़का रहता था, उसके पिता मर गए, उस लड़के का नाम था प्रताप। ध्यान से सुनना, भाभी से मांगा कि भाभी जरा रोटी सूखी लगती, थोड़ा नमक तो दे दो। भाभी ने मैणा मारते हुए कहा कि कमाओ तब नमक मांगो, इतने बड़े हुए हो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। अब जवान लड़के को सूखी रोटी में नमक के बदले में इतना सुनना पड़े, चुप गया। वाराणसी थे, 4-5 कोस दूरी कोई गांव था, वहां का था। वाराणसी आए, बंबई पहुंचे, और बंबई भुलेश्वर महादेव की इर्द गिर्द चक्कर काटे, भूखे प्यासे कोई नौकरी रखे कैसे अनजान को, मंदिर में पड़े रहे। भूख के कारण थोड़ा भगवत चिंतन भी हुआ, अनजाने में प्रकृति के शरीर को थोड़ा भूखा रखा, लेकिन अनजाने में वो परमात्मा तक उसकी भूख और प्यास पहुंची। दूसरे दिन की रात लंगोटधारी जटाधारी एक बाबा आए, अधिकार पूर्वक कहा, ऐ प्रताप, भूखा है, ले मिठाई खा ले और कल जा दुकान पर, काम मिल जाएगा। बाबा चले गए। लोह पर्वत की कथा चल रही। दूसरे दिन भुलेश्वर के पास मिठाई की दुकान पर, बंबई में भुलेश्वर है, बंबई वालों को जिनको पता हो हाथ ऊपर करो, भुलेश्वर जगह का नाम सुना, ये तुम्हारी यहां की कथा बोलता हूं। मिठाई की कोई दुकान थी, उसने रख लिया ग्राहकों को पानी पिलाना। टेबल कुर्सी पे ग्राहक मिठाई खाए, नाश्ता करे, पानी पिलाना। उस प्रताप को महात्मा के हाथ की प्रसादी मिली थी, थोड़ा स्वभाव में नम्रता का सद्गुण था, विनय है। किसी का सत्कार करना, जिसका आप सत्कार करते हो वो बड़ा नहीं हो जाता है, सत्कार करने वाला विनय के गुण से संपन्न हो जाता है। सत्कार लेने वाले को अहम आए तो उसको तो मुसीबत आ गई। कोई आपका सत्कार करता और आप अपने बड़प्पन देखते हो कि मैं बड़ा हूं इसलिए वो नम्रा है, ये भूल में मत पड़ना, ये उसका विनय का सद्गुण है, आप भी विनयी बनो। तो महात्मा के प्रसाद से विनयी युवक प्रताप में कुछ ऐसा प्यारा प्यारा गुण आ गया कि उस दुकान वाले ने उसको अपना बेटा मान लिया, दुकान में भागीदारी हो गई। अब संतान थी नहीं, तो बेटा मान लिया तो सचमुच में बेटे का अधिकार भी दे दिया। समय पाकर दुकान वाला मर गया और वो प्रताप दुकान का सर्वे सर्वा हो गया। जिसको नमक नहीं मिलता था सूखी रोटी के साथ, वो दुकान का भुलेश्वर महंगी एरिया और बंबई दुकान का मालिक हो गया। 5000 रुपए का मनी ऑर्डर भाभी को भेजा कि कमाओ तब नमक मांगो, लो हम अपनी कमाई के 5000 भेज रहे। बाबा सपने में आए कि अरे फिर ये अपना मानते हो प्रकृति की चीजों को, लोह पर्वत वाले लेकिन बंबई की हवा थी जिस किसी के घर पैर घुमाने चले गए और जिस किसी के यहां दक्षिणा लेने चले गए तो आपका तप का मूड़ी कितना है बेटा आपके पास तपस्या साधना या निष्ठा का धन है नहीं और आप फिर उस धन को बांटकर निर्धन होकर चले जाओगे तो कौन कौन पूछेगा आत्म शांति कैसे पाओगे प्रकृति में तुम उलझ जाओगे लाल लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब थोड़ा भी कुछ सत्व गुण होगा थोड़ा भी कुछ श्रद्धा होगी नहीं तो उल्टा ले लेती है मति उसने 5000 दूसरे भेज दिए प्रताप ने गुरु महाराज आए आंखें दिखाते हुए कि मना किया था ना तू अपना मान रहा है ये बोले गुरुदेव भूल हो गई जो आपकी आज्ञा बोले सुबह होते होते ये दुकान का जो वैभव है माल है संपदा है गरीबों में लुटा दे फिर मैं आऊंगा मेरे साथ चलना है समझे प्रताप युवक ने कहा जी गुरु महाराज प्रताप उस गुरु महाराज का बेटा नहीं था दीक्षा भी नहीं लिया था लेकिन मैं तो उस प्रताप को धन्यवाद दूंगा कि संत की आज्ञा न पे लिए संत की आज्ञा का ठुकराना हे राम जी ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा को ठुकरा कर सफल और सुखी रह सके संभव ही नहीं है महाराज आए चलो बैठे गाड़ी में कटनी के पास लोह पहाड़ है वहां गुफा थी उस गुफा में आप खड़े होकर नहीं जा सकते बैठ के नहीं जा सकते लेट के सांप की नहीं जा सकते प्रताप को उसमें बिठा दिया और महाराज 24 घंटे में एक बार भोजन की थाली कुछ रखते थे और एक डिब्बा रख दिया मलमूत्र त्याग न वो बाहर रख देता था अंदर ही रहो बेटे एक साल दो साल 11 साल हो गए महात्मा ने कहा चलो अब नींद तो विदा हो चुकी थी सीधा बैठने का अभ्यास बढ़ गया था उस गुफा में प्राचीनता से संत महात्मा रहते थे अब तुमने जानने योग्य जान लिया कि प्रकृति शरीर है और उसको चलाने वाला तुम असंग तत्व ज्ञान का प्रसाद मिला और पात्रता थी तो थोड़ा सा प्रसाद से काम बन गया जाओ मुक्त आत्मा हो विचरण करते कभी दो दिन कहीं रहे कहीं पांच दिन रहे कहीं कैसे रहे पंजाब में गए अखंडानंद सरस्वती उनसे मिलने गए थे जब वो अपने गांव में कुटिया बनाकर रहने लगे तो सुबह 7 से 10 बजे तक कुटिया खुलती उसमें घूमना हो जाता खिचड़ी बन जाती खाना पीना हो जाता सत्संग हो जाता छलांग मार के पेड़ पे चढ़ जाते हंसते रहते एकदम पतला शरीर और मानो अखंडानंद ने लिखा कि बस बंदर की नाई कहीं भी कूद जाए मुझे इतना उनका शरीर हल्का फुल्का रहता था उस प्रताप महाराज ने अखंडानंद को बताया कि एक बार हम पंजाब गए तो किसी युवती ने हमको भिक्षा के लिए बुलाया हम भिक्षा करने गए भोजन करने गए भोजन अच्छा प्रेम से कराया हमने पा लिया और फिर वो नजदीक हमारे बैठकर हमारे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे थे हमने कहा देवी हम संत हैं ये घृणित कर्म हम नहीं कर सकते वो देखने में खूबसूरत थी कोई नई शादी हुई थी उसका पति कहीं ऑफिस में दुकान में गया था उसने जिद ली अकेली थी तो हमने कहा कि नहीं नहीं इस पतन में हम नहीं पड़ेंगे तो वो आ गई अपने काम दबता है तो क्रोध हो जाता है तो पिस्तौल लेकर आई और मेरे दिमाग पर रखा कि अगर नहीं मानोगे तो शूट कर दूं तो फिर मैंने क्या करा मैंने कहा नहीं नहीं सुनो, पानी तो पिलाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो लेकिन मुझे प्यास लगी, पानी तो पिलाओ। अब मैं वो प्रताप महाराज की भाषा में बोल रहा हूं, वो पानी लेने गई और मैंने उसकी कमरे की चौखट पर डबल कर दिया, शौच कर दी, लेट्रिन कर दिया, और वो थोड़ा इधर उधर लगा दिया, जो प्यारा लग रहा था ना मेरा चेहरा और इशारे। और वो जब ग्लास भर के आई तो मेरी विष्ठा में, मेरे डबल में उसके पैर, तो चीखी ये क्या। फिर मेरे नजीक आई तो मेरे मुंह पे, फिर मैं हंसा, अब तुझे जो भी करना है कर, इसी से शरीर बना है, इस ये शरीर प्यारा लगता है तो उस परमात्मा के कारण लगता है, और जो ये चमड़ा प्यारा लगता है तो इसी से बना है, अब जिसको बुलाना है बुला ले। उसने हाथ जोड़े कि तुम हमारे बाप, अब जाओ यहां से। अखंडानंद कहते हैं ये है प्रतिपन्ना मति, किस समय क्या करना, असत से बचकर सत्य में टिक जाना, ये प्रतिपन्ना मति होती है, जो परमेश्वर का जप करते, ध्यान करते, स्मरण करते, उसकी शरण स्वीकारते, तो उनकी बुद्धि में ऐसी योग्यता आ जाती है कि बड़े बड़े उपद्रवों से हंसते खेलते निकल जाते। तो किसी ने कहा महाराज यहां कैसे खड़े हो, हम यही खड़े रहे, प्रताप महाराज। तो आखिर राजा तक बात गई, तो राजा ने पूछा तुम कौन हो, तो उस महाराज ने, प्रताप महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले मैं राजा हूं। बोले काहे के राजा, तुम तो पशु हो। तो राजा को गुस्सा लगा और जेल में भेज दिया। जेल में भेज दिया तो कोई जानकार व्यक्ति था, उसने पूछा कि महाराज जेल में भेजने के कागजात हम बना रहे हैं, लेकिन आप तो समझदार लगते हो और आपको देखकर हमें तो खुशी हो रही है, फिर आपने राजा को पशु क्यों कहा। बोले देह को जो मैं मानता वो पशु होता है, वास्तविक में मैं आत्मा होता है। तो बोले महाराज आप इतनी ऊंची बात करते हो, फिर राजा का तो ख्याल। बोले मेरा मित्र साधु को राजा ने जेल में डाल दिया, तो हम इस बहाने जेल में जाएंगे, उस यार से मिलेंगे, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है। ऑफिसर ने जाकर राजा को बताया कि तो बड़े तत्वचिंतक महात्मा है, और इन्होंने अपने किसी कारण से इनके साथी को किसी द्वेष के कारण या किसी बेवकूफी के, ऑफिसर की बेवकूफी के कारण कोई साथी इनका जेल में चला गया, तो उनसे मिलने के लिए आपका ऐसे अपमान वक्त, तात्विक बात बोलते हैं। तो राजा ने बोला कि मेरे को पहले पता होता तो, फिर उस महाराज का स्वागत किया। कहां तो नमक नहीं मिल रहा है भाभी के द्वार, और कहां राजा को पशु बोलने पर भी राजा उनको नमस्कार करता है, क्योंकि प्रतिपन्ना मति है, प्रकृति के सत्यत्व का प्रभाव कम हो गया है और अपने आत्मा के प्रभाव में पूर्णता आई है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का, गुरु की पूर्ण कृपा लेनी चाहिए। जरा सा कृपा मिला और हम भी गुरु के बराबर हो गए, हम भी मंत्र दीक्षा देने लग गए, तो तुम्हारा तप नाश हो जाएगा, पुण्य नाश हो जाएगा, प्रभाव नाश हो जाएगा, मति नाश होती चली जा रही और पता ही नहीं चलता कि मेरी मति नाश हो रही। जब मति फिसलती है तो नहीं पता चलता कि हम फिसल रहे, जब फिर ऊपर चढ़ते तब पता चलता कि ये हमारी बेवकूफी थी, फिर पता चलता। तो अब अपने को पता चल गया कि इन रंगों से खेलना हमारी बेवकूफी थी। आप इन अंग्रेजी रंगों से, केमिकल के रंगों से नहीं खेलोगे, पलाश के फूल, हल्दी का रंग, जलेबी का भी थोड़ा बहुत रंग चल जाए, मेहंदी का रंग, रजनीगंधा की सुगंध आदि से होली खेलना, मान तब पचेगा जब अपमान पचा सकते हैं। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता, वो भी अति दुख पाए, अति खता खाए, कई लोग भाषण करने लग जाते, प्रवचन देने लग जाते, मान की वासना उनको कंगाल बना देती है, पुण्यों में कंगाल हो जाते, सूझबूझ में कंगाल हो जाते, परमात्मा भक्ति में कंगाल हो जाते। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। इससे बचना बड़ा कठिन है, इसीलिए सतगुरु की कृपा छाया। प्रताप देखो, मालिक बन गया, 5,000 5,000 का दो चेक दो बार मनी ऑर्डर कर दिया, लेकिन एक गुरु के संकेत से सारी मिलकत उसी समय। अब प्रताप महाराज को पता ही नहीं था कि बापूजी हमारा इतना यशगान करेंगे, लेकिन जो प्रकृति के शरीर में होते हुए परमात्मा में विश्रांति पाता है, उसका यशगान करने से हमारा चित्त भी पवित्र होता है, सुनने वालों का चित्त भी पवित्र होता है, दोषों से भी निर्मुक्ति होती है। नारायण नारायण नारायण। एक संत हो गए, वो कहते हैं उनकी होली तो है निराली, जो है मांग भरी, उनकी होली तो है निराली जो है मांग भरी, साथ फिरती है कई रंग कई राग भरी, अपनी होली तो उसी यार की है राग भरी। हमारा तो भगवान के नाम में राग है, जप में सुमरण में राग है, अपनी होली तो है उस यार के राग भरी, हम फकीरों की सदा होली है बैराग भरी, हम फकीरों की होली है सदा बैराग भरी, अपनी ही खाक अबीरों की बंधी झोली है, अपनी ही खाक अबीरों की बंधी झोली है, अपना ही रंग और अपना ही दिन रोली है, अपना ही रंग और अपना ही दिल रोली है, अपनी होली तो उस यार की है राग भरी, हम फकीरों की सदा होली है बैराग भरी, अपने ही साथ हर एक बोली और ठठोली है, अकेले में बैठते अपने राम से ही बातें करते और ठठोली करते हंसते, अपने ही साथ हर एक बोली और ठठोली है, आप ही हंस हंस के पुकारे हैं खड़े होली है, आस को तोड़ दिया आस के फिर आसन पास, आस को तोड़ दिया आस के फिर आसन पास, रंग में रंग मोहब्बत का रूह में आयास है रास, अपने बेगाने का कुछ दिल न खतरा न हिसाब, अपने बेगाने परमात्मा स्वभाव में न खतरा है, प्रकृति की चीजों में तो खतरा है छूटती है, लेकिन अपने दिल भर के मोहब्बत में न छूटने का खतरा न मिटने का खतरा, शरीर मिट जाए फिर भी उस यार की यारी हमारे साथ मिटने वाली नहीं, हमें तो ऐसी होली मिल गई गुरु कृपा से, अपने बेगाने का कुछ दिल न खतरा न हिसास, होली तो उस यार से खेले हैं खड़े हो विश्वास, और तो पीते हैं होली में मिल मिलाकर शराब, और तो पीते हैं होली में मिल मिलाकर शराब, हम मोहब्बत के नशे में हैं हमेशा गरकाव, चश्म के प्याले हैं हाँ। अब ताली बजाने की छूट है, होली आ रही है, कूदना फांदना ताली बजाना जो ब्रेक मारा था छूट मिल गई अब, और तो पीते हैं होली में मिलकर शराब, हम मोहब्बत के नशे में हैं हमेशा गरकाव, चश्म के प्याले हैं और आंसू की मैं दिल के कबाब, गम में पी पी के लहू लहते उस यार का आनंद बेशुमार, तन को खाक किया हो कि मोहब्बत में असीर असीर है, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम हो, मेरा फोटो लगे, मेरा प्रभाव हो, इसको तो मैंने खाक कर दिया। तन को खाक किया होके मोहब्बत में असीर, रात दिन उसका उड़ाते हैं गुलाल और अबीर। ऐसी होली है उन्हीं की यारों, जो दिल दिल भर के साथ फकीरी में है। फकीर उसे नहीं कहते जो लाचार हो। फकीर उसे नहीं कहते जो लाचार है, भिखमंगा है। फकीर उसे कहते जिसने अपने उस अस्तित्व में संदेह की फाकी कर दी। जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां मौत नहीं है, इस बात को ठीक से पकड़ा है संदेह नहीं, वो फकीर है। हद टुपेसो ओलिया, बेहद टुपेसो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास फकीर। संशय सबको खाते, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे, और रंग सब जाए उड़ एक ब्रह्म रंग में रंगे। होली खेलत है गिरधारी, मीरा ने क्या सुंदर होली गाई। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी। चंदन केसर छिड़क मोहन, अपने हाथ बिहारी। मुरली चंग बजत बजत डफ न्यारो, संग ज्योति व्रज नारी। नारायण 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 नारायण। तो मीरा कहती है, गावत चार धमार रागत दई दे कल कर तारी रे, छेल छबीले नवल कन्हा, संग स्वभाव प्राणन प्यारी रे। उनकी प्राण प्यारियां गोपियों के साथ छेल छबीला कन्हैया ये होली खेल रहे। गावत चार धमार रागत हैं दई दे कल कर तारी, फाग जो खेलत रसिक सांवरो। मीरा ने कहा है, फाग जो खेलत रसिक सांवरो, बाढ़ो व्रज रस भारी रे। ये व्रज रस बढ़ गया भारी। फाग जु खेलत रसिक सांवरो, बाढ़ो व्रज रस भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। होली खेलत है मुर गिरधारी, मुरली चंग बजत डफनारो, संग जुवती व्रजन नारी। चंदन केसर छिड़क मोहन, अपने हाथ बिहारी। आपके चित्त में भगवत भक्ति और भगवत मई होली हो जाए। होली आरोग्य के कण बढ़ाती है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ये सात्विक सुगंध से ज्ञान तंतुओं में पुष्टि आती है, सारे शरीर में पुष्टि आती है। तो जीवनी शक्ति हरास करने वाले रंगों से होली न खेलना, न दूसरे को प्रोत्साहित करना। जीवनी शक्ति विकसित हो भगवान नाम और भगवत भाव से, और प्राकृतिक रंगों और सुगंधियों से होली खेले, तो वर्ष भर हमारा चित्त जो खिन्न हो जाता है, उस खिन्नता से बचकर हम प्रसन्नता के प्रसाद से पूर्ण हो सकते हैं। होली को उत्सव ये हमारे प्राकृतिक मांग है। होली जो हो गया सो हो गया, भूल जा अपना प्राकृतिक धन दौलत का बड़प्पन, भूल जा और छोटा आदमी छोटप्पन भूल जा। बस होली के रंग में, रंगरेज के रंग में रंगिए साहेब मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो भक्ति को रंग। जितना आत्मिक गति वाला संग होगा उतना आत्मिक लाभ होगा, जितना ऐहिक वाला होगा उतना ऐहिक होगा। लेकिन बहुत लोग ऐहिक लाभ की जगह पर भी ऐहिक नुकसान ज्यादा कर लेते हैं। तो होली का उत्सव दो तरीके से मनाया जाता है, एक तो हर्ष उल्लास और से होली खेलते अपने त्वचा पर केसूड़े के फूलों का रंग, गुलाब के सूड़ा, रजनीगंधा आदि का उपयोग करके या गंगा जल का उपयोग करके वैदिक मंत्र पढ़ के जो रंग बनाए और छिटकते हैं उससे हमारे शरीर के सप्त रंगों में जो कमी है उसकी पूर्ति का काम हो जाता है। तो ऐहिक लाभ होता है कि वर्ष भर हमारे को चिड़चिड़िया होने का अथवा खिन्न होने का अवसर आएगा, फिर भी हम उतने नहीं होंगे। विदेश के लोग इस उत्सव का लाभ नहीं उठा पाते तो वहाँ चिड़चिड़ापन, खिन्नता और सुसाइड भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि इसे आध्यात्मिक लाभ उठाए मानवा, ये मनुष्य मात्र इसका फायदा उठा सकता है। गीता कहती मानवा, फिर ईसाई हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, कोई भी हो, मनुष्य मात्र फायदा उठा सकते हैं। तो इन उत्सवों में 10 जो नियम है उसका पालन जो भी करेगा उसको फायदा होगा होगा होगा। अग्नि पुराण 175, 10 और 11, 175वां अध्याय, 10 और 11वां श्लोक। क्षमा सत्यम दया दानम शौचम इंद्रिय निग्रह देव पूजनं हवनम संतोषो अस्त्यम एवच। सारे व्रतों में ये 10 चीजें अगर आ गई तो उस व्रती का ओज, बल, प्रभाव और आध्यात्मिकता का विकास होगा। कुछ होते हैं व्रत, कुछ होते हैं पर्व और उत्सव, कुछ होते हैं नियम। नियम, व्रत, पर्व और उत्सव ये सभी मानवीय चेतना को पशुता से बचाकर ईश्वरत्व के तरफ निखारने के लिए होते हैं। जो बात आपको शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा अच्छी लग गई उसका पालन करने का दृढ़ संकल्प करना, उसको बोलते हैं व्रत। वर्क वैल्यू, वर्क प्ले वैल्यू, प्ले दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड के। जिस समय जो काम करने का हो निमित्त उस समय पूरा मन लगाकर करना चाहिए, नहीं तो वे व्यक्ति मूर्ख रह जाते, भगतड़े हो जाते, आरती भी करते, पूजा भी करते लेकिन मूर्खता छोड़ते नहीं, असाधन छोड़ते नहीं, तो कितना भी साधन करे बरकत नहीं आएगी। आप 23 घंटे 49 मिनट और 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड साधना में लगे रहो और 1 सेकंड असाधन किया तो साधना का प्रभाव का फल निखरेगा नहीं। मानव के नाते हमें असाधन से बचना है, की हुई गलती फिर न दोहराएं। कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, ये गलत है स्वास्थ्य के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। हाँ, अब गर्दन ठीक हो गई लेकिन आदत पड़ जाती। तो प्राणायाम करने में साधन साधन है ना प्राणायाम, लेकिन असाधन हुआ तो प्राणायाम का फायदा नहीं हुआ। ऐसे पैसा कमाना ये साधन है, लेकिन उस पैसे को समाज को नोच कर भी बेटों को ऐश आराम वाला दिया, ये असाधन हो गया। साधन करें और असाधन का त्याग करें तो बस मनुष्य शरीर है, ईश्वर प्राप्ति आपको होनी है, आप न चाहे तो भी हो। जैसे भोजन करते और आप न चाहे पेट भरे फिर भी भर जाएगा। साधन आप थोड़ा करिए कोई बात नहीं, लेकिन असाधन से बचिए। दान थोड़ा करिए लेकिन दो नंबर के धंधे से बचिए, माला थोड़ी घुमाइए थोड़ा बोलिए लेकिन झूठ से बचिए, तो असाधन से बचने मात्र से आप साधन के फल को बिल्कुल नहीं पाएंगे। बड़े लोग चालाक होते ऐसा वैसा, वो ठाकुर जी के आगे गुरु के आगे होने पर भी असाधन नहीं छोड़ते हैं तो फटकार के अधिकारी हो जाते हैं। फिर आत्मतृप्ति नहीं होगी, आत्मरति नहीं होगी, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। तो आत्मतृप्ति आत्मरति आत्मसंतुष्टि ये मानव की मांग है, रति प्रीति और संतुष्टि ये मानव की मांग है। अगर वो अंदर मांग पूरी नहीं हुई ईश्वरीय सुख से तो फिर सेक्स से रति करेगा, भोजन से और चटोरेपनों से तृप्ति करेगा और धन और पद के संग्रह से संतुष्टि खोजेगा, उनमें संतोष सदा मिलने वाला नहीं। रति से संभोग से थक जाएगा, जल्दी मरेगा लेकिन रति से पूरा संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही खा खा के उबेगा लेकिन भोजन से पूरी संतुष्टि नहीं होगी, क्षण भर की हो। तो रति प्रीति और संतुष्टि, मोही आदमी परिवार को और शरीर को प्रीति करता और फिर फरियाद करता है कि मैंने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, बेटों ने ऐसा किया। जो प्रीति परमात्मा के नाते होनी चाहिए थी वो मोह के नाते हो गई, जो रति परमात्मा के नाते होनी चाहिए वो काम के नाते हो गई, लोभ के नाते हो गई, असाधन के नाते हो गई। इसलिए 12-12 वर्ष बीत जाते और तड़फ नहीं होती सत्य को पाने की, गुरु को समझने की मति नहीं जागते, ईश्वर को, ईश्वर अपने साथ है, जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते उसका नाम है ईश्वर, और जिसको आप सदा नहीं रख सकते उसका नाम है शरीर और संसार। जिसको सदा नहीं रख सकते उसका नाम है शरीर और संसार। तो कितना भी प्रयत्न करो शरीर को, क्या क्या इलाज करो, फिर भी शरीर तो शरीर है। कितना भी प्रयत्न करो अपनी स्थिति बनाए रखने की, धन की, दौलत की, जवानी की, सरक जाएगी। तो असाधन ये हो जाता है कि जो हम नहीं, हमारा नहीं, उसको हम और हमारा मानते हैं, जो हम है हमारा है उसको हम नहीं जानते। तो उसको जानने के लिए ये 10 सद्गुण भर दो, क्षमा का गुण लाओ, नहीं तो एक दूसरे के लिए गांठ पड़ जाएगी, परेशान हो जाओगे। सत्य का गुण लाओ, असत्य असाधन है सत्य साधन है। दया का गुण लाओ, क्रूरता असाधन है दया साधन है। दान का गुण लाओ, संग्रह असाधन है दान साधन है। इंद्रिय निग्रह, खाओ लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल कर, पत्नी पति का व्यवहार करो लेकिन संतान के जन्म का ख्याल करके, देवता की पूजा करो लेकिन प्रीति पूर्वक करो। हमारे हृदय में वो जो देव छुपा है उस देव को प्रकट करने के लिए परमात्मा देव की अथवा गणपति देव की या और कोई देवी देवता की हम पूजा करते, तो ये देव पूजन महासाधन हो जाएगा। हवन करते तो उस हवन में जो जप करते हुए हवन करेंगे तो मंत्र का कई गुना प्रभाव फैल जाता है। लेकिन वो हवन करे तो भाव साधन ये रखे कि अग्नि में सत्ता परमात्मा की और हाथ उठ रहा है वो भी परमात्मा सत्ता से, और जिस देव को हम ये हवन करके संतुष्ट करें उसमें भी मेरे परमात्मा ही संतुष्ट हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मग्निर् ब्रह्मणेहुतम् ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मरविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणेहुतम् ब्रह्मेन केन तेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। उस ब्रह्म परमात्मा की ही वस्तुएं हवन के योग्य, वही ब्रह्म परमात्मा हवन सामग्री बने। वही ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से हवन हो रहा है, वही ब्रह्म परमात्मा अग्नि रूप होकर हमारी ईश्वरता जगाने का अवसर दे रहा है। उसी ब्रह्म परमात्मा से देव हम पर प्रसन्न होंगे, आपका महासाधन हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे को भोजन कराते हो या पति को या कुटुंबी को, तो स्वाद की प्रधानता ना हो, उसके स्वास्थ्य की प्रधानता हो। केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं, मन भी उनका पवित्र रहे। जैसे मछली है, अंडा है, शराब है, या ऐसी हल्की चीजें हैं, या बासी खुराक है, या ये डबल रोटियां है, उससे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और तमोगुण भी होगा। तो हम असाधन करते रहते, चाहे जो खा लिया और भजन कर रहे, तो ये असाधन है। तो असाधन अगर मिट जाए तो थोड़ा सा साधन आपको साध्य से मिला देगा। अशुभ मिट जाए तो थोड़ा सा शुभ उस शुभ स्वरूप परमात्मा को द्रवित कर देगा। मनुष्य क्या है, तीन घटकों का मिश्रण है, पार्श्वीय अंश, मानवीय अंश और ईश्वरीय अंश। इंद्रिया पशु की ना अच्छा कुछ देखा तो उधर ललक पड़ती है, जीभ ने अच्छा फरसान मिठाई या नमकीन देखा पानी आ गया, नाक सुगंध के तरफ ले जाता है, जीभ हलवाई के तरफ ले जाती है, सेक्सिल कामी इंद्रियां विकारों के तरफ ले जाती है। अब आप मनुष्य हैं, एक तरफ पशुता खींचती और दूसरी तरफ ईश्वर खींचता है। ईश्वर में ही रति प्रीति और तृप्ति से ही आपका कल्याण होगा, बाकी तो कितना भी करके देखो, कितने जन्मों तक तृप्ति के लिए भटकता रहा जीव, तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि जीव है शाश्वत नित्य और शरीर और विकार है अनित्य, तो नित्य आत्मा को अनित्य वस्तुओं से तृप्ति होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं। असरक को सरकने वाले से सदा रति नहीं रह सकती, सदा तृप्ति नहीं रह सकती और सदा प्रीति नहीं रह सकती। तो ये धोखा निकल जाए पहले, नजर ऊंची हो जाए, समझ ऊंची हो जाए। इसलिए जप तप समाधि बहुत ऊंचा है, वो समाधि छोड़कर भी सत्संग की आज्ञा दी। सनकादि ऋषि सत्संग करते, 60,000 वर्ष की समाधि एक तरफ, विश्वामित्र के और वशिष्ठ जी का दो क्षण का सत्संग, समाधि से ऊंचा, तपस्या से ऊंचा हो गया। तो सत्संग से समाधि में जो बैठोगे तो आपको जैसा चिंतन है, जैसा आप समझे हैं, उसकी दृढ़ता होगी। और सत्संग से पर्दे हटेंगे, आप जो हैं वो प्रकट होगा। बैठे समाधि से तो आपने जो माना है, जाना है, वो दृढ़ होगा, और सत्संग मिलेगा तो आप जो हैं वो प्रकट होगा। आप हैं नित्य, इंद्रियां हैं, मन है, और संसार है अनित्य। आप हैं अमर, अवस्थाएं हैं मरने वाली, समाधि अवस्था भी मरने वाली, समाधि सदा नहीं लगा सकते, भोजन सदा नहीं कर सकते, क्रोध सदा नहीं कर सकते, असाधन भी सदा नहीं कर सकते। बोले महाराज थोड़ा थोड़ी बहुत हो जाती तो आप साधन भी असाधन भी करते, तो असाधन सतत थोड़े करता है कोई, सतत कोई झूठ बोल सकता है क्या? तो सतत वो भी बोलता है, थोड़ा बहुत साधन तो वो भी करता है। लेकिन आपका जो साधन है उसमें असाधन की गंदगी को निकालो, ये साधन है। असाधन को निकालना भी साधन है। तो क्षमा सत्यम दया दानम शौचम इंद्रिय निग्रह देव पूजार अग्नि हवनम संतोष अस्त्यम एवच, अर्थात चोरी न करना और विषय विकार जो वस्तु मिली है, मकान भुवन पत्नी बच्चे, उसमें संतोष हो जाना, दूसरे की संपत्ति दूसरे का सौंदर्य देखकर ललकाना नहीं, उसका जिससे संपत्ति और सौंदर्य दिखता है उसका आधार मेरा आत्मा परमात्मा मेरे साथ है, उसके रूप में भी मैं ही धनवान होकर दिख रहा हूँ। मैं ही सुंदर होकर दिख रहा हूं, ये साधन है। लेकिन उसको देखकर जलना असाधन है, और उसी जैसा होने के लिए कूड़ कपट धोखाधड़ी करना असाधन। संतुष्ट सततम योगी, भगवान कृष्ण ने कहा योगी सतत संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी, कभी भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। तो आप क्या सदा सुखी नहीं रहना चाहते, दुखी रहना चाहते? दुख नहीं चाहते, लेकिन असाधन की आदत पड़ी है। पांचवी अंश जो है उसको भी हम मदद करते, सहयोग करते। मानवीय अंश में हम खड़े हैं, पांचवी अंश को भी पोषते हैं, और ईश्वरीय अंश की मांग बुझती नहीं। सच्ची मांग बुझती नहीं। सच्ची मांग है कि सदा सुख, नित्य जीवन, ये मांग है। सच्ची मांग बुझती नहीं और झूठी वासना छूटती नहीं। चलो जरा सा खा ले, जरा सा कर ले, चलेगा चलेगा चलेगा, मैं फिर चलता ही रहे 84 लाख योनियों में। इसीलिए व्रत की जरूरत पड़ती है, नियम की जरूरत पड़ती है। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, दृढ़ता है कि दीक्षाम मापनोति दक्षिणा, आप में दृढ़ता है कि दक्षिणाम श्रद्धाम मापनुयात, वेद का मंत्र अथर्ववेद का, श्रद्धाम सत्यम मापनुयात, उस श्रद्धा से अपने में, आत्मा में, ईश्वर में, शास्त्र में, गुरु में दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों मित्र थे। हिंदू ने कहा राम बड़ा, मुसलमान ने कहा चुप रहे, अल्लाह बड़ा, खुदा बड़ा। दोनों आपस में जरा लग गए, आखिर सोचा कि लड़ेंगे क्यों, जिगरी दोस्त है, पेड़ पर से कूदो, राम का नाम लेकर अगर चोट नहीं लगे तो राम बड़ा, अल्लाह का नाम लेके मैं कूदूंगा, चोट नहीं लगी तो अल्लाह बड़ा। तो हिंदू कूदा और उसकी दृढ़ता थी, उसके जीवन में व्रत नियम था। हे राम, तुम रोम रोम में व्याप्त हो सर्वत्र, और तुम रक्षण करने समर्थ हो, बिल्कुल पक्की बात। जय श्री राम, कूदा और उसको चोट नहीं लगी, क्योंकि अपना अहंकार नहीं था। मुसलमान चढ़ा, अब देखा कि अपने को चोट लग जाए तो इसको तो राम ने बचा दिया, मुझे अल्लाह बचाए कि ना बचाए क्या पता। तो उसने क्या करा, राम खुदैया जय, राम खुदैया जय, मैं बचू, जाने कौन बचाए, इसलिए दोनों का नाम लो, राम खुदैया जय। पैर टूट गया। तो संशय असाधन हो गया। संशय क्या हुआ, असाधन हो गया। वो संशय ना है, इसलिए जीवन में व्रत है कि इतना तो करना ही है, कमाई का इतना ऐसा तो करना ही है, समय का इतना ऐसा तो करना है, इससे आपके संकल्प में बल आ जाएगा। फिर होते हैं पर्व व्रत, व्रत में उपवास भी होते हैं। और रोजाओं के लिए लिखा है कुरान में कि सत्य का आश्रय ले, क्षमा का ले, दया का ले, हिंसा न करे, नहीं तो खाली भूखामरी का रोजा का कोई फायदा नहीं। जैसे अपने शास्त्रों में आज्ञा दी, वो उस प्रकार का कुछ अंश कुरान में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आप अमल करेंगे तो मुसलमान का विकास होगा, फायदा होगा। रोजा रखे और कोई तुम्हारे पर क्रोध करे तो उस वक्त आप उसको बोल दो मैं तो रोजे वाला हूं, कोई गाली दे दे तो आप कह दो मैं तो रोजाई हूं, मैं गाली नहीं दूंगा। सामने वाले को पता चले कि रोजाई है, रोजे वाला है, रोजा रखा है, तो मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं क्रूरता नहीं करूंगा। तो ये सनातन संस्कृति की जिस जिस धर्म ने अपने अपने ढंग से लिया है वो बातें, और उस पर अमल करा तो भला हो जाएगा। तुम पंथ और मजहब के कानूनों में भी जो सनातन सत्य है उसका पालन करने से भला हो जाएगा उनका, अपने अपने मजहब वालों का।